ओम शांति। आप रामलोचन भाई जी, आज हम सभी को भगवान से मिला हुआ होमवर्क विषय पर अपने सुंदर अनुभव के साथ क्लास कराएंगे। आप बड़े ही हर्षित मुख एवं लोकप्रिय प्रभु प्रिय है। करीब 34 सालों से आप समर्पित रूप से यज्ञ सेवा पर रहे हैं। वर्तमान समय शांतिवन के वीआईपी भंडारे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का विषय है भगवान से मिला हुआ होमवर्क। इस सभा में भाई जी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं गॉडली स्टूडेंट हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं भगवान पढ़ा रहा है और जो पढ़ाई पढ़ाता है उस पढ़ाई का नाम है मुरली, ब्राह्मणों की भाषा में, दुनिया की भाषा में गीता कहा गया है, लेकिन ब्राह्मणों की भाषा में है मुरली। मुरली ही हमारे जीवन का आधार है। मुरली में ही भगवान सब कुछ बताता है। अभी पिछली मुरली में जो 24 अक्टूबर को बाप दादा आए थे डबल विदेशियों से मिलने, ज्ञान तो सबके लिए होता है, एक निमित्त कोई को कहा जाता है। जैसे भगवान ने ज्ञान सबको दिया, लेकिन हे अर्जुन, किसी को संबोधित करने के लिए कहना ही पड़ता है। तो ऐसे भगवान का ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन जो पार्टी जिस देश के होते हैं नाम उनका होता है। तो उस मुरली में बाबा ने कहा था कि बाप दादा ने वर्तमान समय बच्चों की रिजल्ट चेक की तो क्या देखा कि बच्चों के पास अभी तक माया आती रहती है। अभी तक बच्चों को माया ने छोड़ा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि माया दो रूप में आती है बच्चों के पास, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैंपन का देह अभिमान, कि जो मैं कहता हूँ वही राइट है, मेरी बात मानी जाए तो देह अभिमान का मैंपन, ये दो रूप में माया आ रही है। तो बाबा ने कहा इन दोनों से मुक्त होने की सहज विधि बाबा ने दी है कि जो मुरली चलाता है बाबा, उसको बाबा होमवर्क के लिए चलाता है। वर्तमान तो सिर्फ आप सुनते हो, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म तो कर्म क्षेत्र पर जाकर करेंगे। जब बाबा मुरली चला रहा है, आप क्लास में हैं या यहां हैं, तब तो सिर्फ सुनते हो, लेकिन उस सुने हुए को प्रैक्टिकल में एक्शन में लाना, वो तो आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाकर करते हो। तो बाबा ने कहा, अगर बच्चे होमवर्क में स्वयं को बिजी रखें तो दोनों से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ संकल्प से भी और देह अभिमान से भी। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, मुरली में बाबा मनसा वाचा कर्मणा और दिव्य गुणों की धारणा, ये चारों बातों पर हर मुरली में बाबा रोज समझाता है। तो अगर उस मुरली की पॉइंट्स को मनन करते रहें, मगन में आ जाएं, तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे। ये व्यर्थ संकल्प सुनने में तो साधारण शब्द है, लेकिन व्यर्थ संकल्प माया या रावण का सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा पावरफुल शस्त्र व्यर्थ संकल्प है। जैसे लौकिक दुनिया में देखो, अगर कोई देश किसी देश पर या स्टेट पर अगर अटैक करता है, आक्रमण करता है और उसे विजय प्राप्त करना है, तो दो बात वो करता है। पहली बात तो वो कम्युनिकेशन की लाइन को तोड़ देता है, जिससे सिपाहियों को, लड़ने वालों को कुछ संदेश न मिल सके कि क्या करना है, तो ऑटोमेटिक दूसरों के हाथ से मारे जाएंगे। और दूसरा काम सप्लाई लाइन तोड़ देता है, जहां से खाने पीने के लिए कुछ आने वाला है उस रास्ते को ही तोड़ देता है। तो खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखे मर के या सरेंडर हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। यही काम माया करती है। जब व्यर्थ संकल्प आपका चलता है तो भगवान से कनेक्शन आपका टूट जाता है। तो जैसे भगवान से कनेक्शन टूटा, बुद्धि की दिव्यता हटी, फिर तो माया के अधीन हो ही जाएंगे। क्योंकि जब तक भगवान के साथ कनेक्शन है, बुद्धि दिव्य है, तब तक दिव्य निर्णय देती रहेगी, आप सेफ रहेंगे। लेकिन भगवान से कनेक्शन टूटा तो बुद्धि की दिव्यता खत्म हो जाती है, व्यर्थ की तरफ चले जाते हैं, तो माया के अधीन बन जाते हैं। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प चला, भगवान से कनेक्शन टूटा, भगवान से शक्ति मिलना बंद हो गई। तो जैसे शक्ति मिलना आत्मा को बाबा से बंद हुई, तो आत्मा ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी, और कमजोर आत्मा के ऊपर माया बहुत जल्दी राज्य कर लेती है, दास बना लेती है। और दास की निशानी सब जानते हैं, उदास, चेहरा खिला हुआ नहीं होगा। भगवान के मिलने का नशा चेहरे से नहीं दिखाई पड़ेगा, ये है दास की निशानी। तो व्यर्थ संकल्प और देह भान, इनसे मुक्ति का साधन है कि बाबा के मुरली का होमवर्क अवश्य करना। जो बच्चा होमवर्क करता है वो टीचर के दुआओं का पात्र बन जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में तीन चीज की आवश्यकता है, और तीनों तीन संबंध से मिल रहे हैं, आशीर्वाद, दुआ और वरदान। आशीर्वाद, दुआ और वरदान। आशीर्वाद देता है मां बाप देते, तो आशीर्वाद लेने की विधि है बाप को राजी करना, टीचर से दुआ लेने की विधि है होमवर्क करना, सतगुरु से वरदान लेने की विधि है सतगुरु के समान अशरीरी होकर के बाप की याद में रहना। लौकिक में भी देखो, बाप से बच्चे को आशीर्वाद कब मिलता है? आशीर्वाद लेने की सुंदर विधि है आज्ञाकारी बनना। आप अपने जीवन में देखो, लौकिक में आपके दो चार बच्चे हों, एक बहुत तेज बुद्धि वाला हो, खूब पैसा कमाता हो, एक कम बुद्धि वाला हो, पैसा कम कमाता हो, लेकिन जो ज्यादा पैसा कमाता है वो आपका कहना ना माने, और जो पैसा कम कमाता है, बुद्धि कम है, लेकिन आपकी आज्ञा पर पूरा चलता है, तो दोनों में आपका आशीर्वाद किसके लिए निकलेगा? जो कहना मानता है। तो भल हमारे अंदर कोई गुण विशेष है या नहीं है, कोई विशेष शक्ति है या नहीं है, लेकिन अगर हम बाप के आज्ञाकारी बन जाएं, तो बाप की आज्ञा का रिटर्न, भगवान का आशीर्वाद हमें संपन्न स्वतः बना देगा। तो बाप से आशीर्वाद, टीचर से दुआ, दुआ लेने की विधि, एक तो पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल, और दूसरा होमवर्क। जो बच्चा होमवर्क करता है, टीचर की उसके प्रति एक्स्ट्रा दुआएं रहती हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में, अपने यज्ञ में, थोड़े पुराने होंगे, जगदीश भाई को जानते होंगे, जिन्होंने सारी किताबें लिखी है। एक बार मधुबन में जब साकार बाबा थे तो रात्रि क्लास के बाद एक टॉपिक दिया और सबको बोला कि इस पर लिख करके लाना। तो जैसे सब क्लास से कमरे में पहुंचे लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो लोग लिखेंगे कहां से, सब सो गए। सबने यही सोचा कि बाबा तो जानता है लाइट चली गई, कैसे लिखेंगे। लेकिन जगदीश भाई कमरे से बाहर जाकर के जो रोड की लाइट थी उस रोड की लाइट के नीचे बैठ करके लिखा, क्योंकि जगदीश भाई के अंदर ये संकल्प था कि यह किसने कहा है, बोलने वाला कौन है। ये भगवान की पहचान थी, भगवान के आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। और सुबह जब क्लास में बाबा ने पूछा कि किसने लिख करके लाया है, तो सबका एक ही जवाब था, बाबा लाइट नहीं थी। लेकिन जगदीश भाई ने हाथ उठाया कि मैं लिख कर लाया हूं। उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को संजय का वरदान, गणेश का वरदान, दिव्य बुद्धि का वरदान उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को दे दिया। तो वो वरदान कैसे मिला? होमवर्क करने से। इतना होमवर्क का महत्व है। सिर्फ होमवर्क किया, भगवान के आज्ञा की पालना की। अपनी प्रकाशमणि दादी सुनाती थी कि हमने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इतनी आगे कैसे चली गई, जिसने आपको कोर्स दिया वो आपसे पीछे रह गई और आप उससे आगे चली गई, क्या विशेष पुरुषार्थ किया है? तो मम्मा ने कहा, क्या विशेष पुरुषार्थ किया ये तो मैं नहीं जानती, एक ही बात जानती हूं कि जो बाबा के मुंह से निकला वो मुझे करना ही है, और करने लग जाती हूं इसलिए बाबा हमको इतना आगे बढ़ा दिया। हमारे करने में अंतर क्या है? करते हम सब भी हैं, लेकिन जिस समय बाबा ने कहा उसी समय नहीं करते, और उस समय ना करने से, समय बीतने से, बीच में गैप पड़ने के कारण कई प्रकार की समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां आ जाती हैं जो फिर कर नहीं पाते। तो होमवर्क हमें भगवान के दिल पर चढ़ाने का, होमवर्क भगवान से वरदान लेने का, होमवर्क भगवान के समान बनाने का, ये बहुत सुंदर विधि है। रोज मुरली में होमवर्क बाबा देता है। अगर आप होमवर्क का लक्ष्य ले लो तो देखो प्रैक्टिकल कितना फायदा होगा। जब आप मुरली सुनकर के अपने सेंटर पर मुरली सुनकर के ओम शांति, तो जब आप सेंटर पर मुरली सुनकर के घर जाते हो, अगर आप मन में कोई होमवर्क नहीं लिया है कि मुझे यह करना है, तो सबको अनुभव होगा कि क्लास से उठते ही आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, और जैसे थोड़ी देर आपस में बातें किया तो मुरली क्या चली थी वो सब भूल जाता है, मुरली की सारी पॉइंट भूल जाती और स्थिति भी व्यक्त भाव में आ जाती है, देह भान वाली आ जाती है, अभिमान नहीं लेकिन भान वाली आ जाती है, और देह भान की स्थिति अगर अटेंशन ना दिया तो देह अभिमान में जल्दी ले आती है। तो पहला नुकसान कि आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दूसरा नुकसान, अगर आपने होमवर्क अपने मन में नहीं लिया है कि मुझे यह करना है, उस पर चिंतन नहीं कर रहे हो, तो जब आप सेंटर से घर जाएंगे तो इधर उधर साइट सीन जरूर देखेंगे, और अगर इधर उधर देखा तो देखने के बाद संकल्प अवश्य चलता है। अगर कोई थोड़ी ज्यादा ऐसी चीज देख ली जो मन पे छाप पड़ जाती है, फिर काफी समय तक उसकी याद आती रहती है, भूलना चाहें तो भूल ही नहीं पाते हैं, तो वो साइट सीन आपके मन को व्यर्थ संकल्प में सहज ले जाएगी, माया का दास बना देगी। तीसरी बात, जब आप घर पहुंचते हैं और मन में होमवर्क नहीं लिया है, देह भान में हैं, आपने घर में किसी को कोई काम बताकर आए थे, उसने ठीक से काम नहीं किया है, या कुछ गड़बड़ है, या उन्होंने कुछ आपको बोल दिया, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, और अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया तो क्या आप परिवार वालों को ये कह सकेंगे कि आप आश्रम पर चलो, वहां भगवान पढ़ाते हैं? कह पाएंगे घर वालों को ये? वो यही कहेंगे आप जाते हो, मैंने देख लिया क्या पढ़ाते। कितनी बड़ी डिससर्विस है ये, लौकिक वालों को भगवान से बेमुख करने का पाप हमारे ऊपर आएगा, इसलिए व्यर्थ संकल्प साधारण चीज नहीं है, और इसको मिटाने का साधन ही होमवर्क है। अगर होमवर्क करो तो संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। उदाहरण के रूप से मान लो आज की मुरली आपने सुनी, मुरली सुनने के बाद एक पॉइंट आपने लिया कि आज मुझे इस पॉइंट पर पूरा पुरुषार्थ करना है, और आपने सारा दिन उस पॉइंट पर पूरा पुरुषार्थ किया। अगर कोई भी आत्मा एक बात पर 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा अगर अटेंशन दे तो क्या वह पॉइंट उसकी नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना, स्वरूप आ जाएगा ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट है, संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन हम करते क्या हैं, मन को खाली छोड़ देते हैं, उसको काम नहीं देते हैं, होमवर्क नहीं दे रहे हैं, मन को खाली छोड़ देते हैं। और कहावत क्या है, खाली मन फिर शैतानी की बात सोचता है। क्या शैतानी की बात? पास्ट संस्कार वाली बात, पास्ट जीवन वाली बात वो सोचना शुरू करता है। इसलिए ना हमारे संस्कार परिवर्तन हो पाते हैं, ना आत्मा में शक्ति भर पाती है, और ना आत्मा निरंतर योगी बन पाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प से शक्तियां नष्ट बहुत होती है। जैसे अगर बाबा की याद में है, कनेक्शन जुटा है तो शक्ति आ रही है, शुभ भावनाएं हैं, शक्ति जमा हो रही है। ऐसे अगर व्यर्थ संकल्प है, निगेटिव है, तो शक्तियां बेस्ट जा रही हैं। तो देखने सुनने बोलने से शक्तियां जमा भी हैं तो जाती भी है। इसलिए होम वर्क जो बाबा मुरली में दे रहा है उसको अपना शरीर का एक अंग जैसे बना लो। जैसे शरीर के किसी अंग के बिना काम नहीं चल सकता है, परेशानी पड़ती है, ऐसे होमवर्क हमारे ब्राह्मण जीवन में इतना जरूरी है। कोई भी पॉइंट लो, गुण लो, शक्ति लो, ज्ञान लो, कुछ भी, लेकिन होमवर्क अवश्य लो, आपका मन बिजी रहेगा। और वो भी होमवर्क भगवान रोज दे रहा है, स्वयं भगवान जिसको मुरली कहते हैं। मुरली ऐसा चीज है जो हमको संपूर्णता की स्थिति में स्थित कर देगा। देखो, मुरली शब्द में ही सब समाया है। मुरली 5 शब्दों से बनी है। मुरली 5 शब्द से है, मा, उ, रा, ला और री। इन 5 शब्दों में देखो बाबा कैसे पूरा ज्ञान दे दिया है। पहला शब्द है मां। मां अर्थात मुरली से सबसे पहली प्राप्ति है मधुरता। हर ब्राह्मण बच्चे को अनुभव होगा कि जैसे बाबा का बच्चा बना, मुरली सुनना शुरू किया, उसके अंदर से बुराई निकलना शुरू हो गई ऑटोमेटिक। क्रोध भी कम होने लगा, सब बुराई निकलने लगी। तो बुराई के कारण जीवन में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, लेकिन जैसे बुराई निकली, मुरली अर्थात ज्ञान, समझ आया और बुराई निकलने लगी, मिठास आने लगी। तभी बाबा कहता आपको देवताओं जैसे मीठा बनना है। मीठा मतलब अवगुण नहीं, गुणवान। तो मां से पहली प्राप्ति है मधुरता, बहुत जीवन में मिठास आती है। हां, वो उस बच्चे के ऊपर है कि मुरली किस प्रकार से सुनता है, क्योंकि मुरली सुनने की भी चार स्टेजेस है। जो मुरली सुनते हैं किस स्टेज में सुनते हैं उनके ऊपर है। पहला है, एक है मुरली सुनना, श्रोता। दूसरा है सरोता। तीसरा है सोता। और चौथा है स्वरूप। पहला है सुनना, मुरली सुन रहे हैं, बाकी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, बैठे सब सुन रहे हैं मुरली, लेकिन अंदर से पता नहीं कहां चक्कर लगा रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तुरंत अगर पूछे बहन जी क्या कहा बाबा ने, ऐसे चौंक उठेंगे, पता नहीं क्या बोला है, कहीं खोए हुए थे। तो एक है श्रोता, सुनने वाले। दूसरे हैं सरोता। सरोता उसे कहते हैं जो पान खाते ना, सुपारी को काटता है, काटने की चीज को सरोता कहते हैं। तो यहां पर भी कई क्लास में बैठे हैं, इधर देखेंगे वो सो तो नहीं रहा है, बगल वाले को कहेंगे देखो झुटका खा रहा है, वो बोल रहा है, अरे झुटका वो खा रहा है, तुम मुरली सुन रहे हो या उसको देख रहे हो, देखो वो उससे बात कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। सुनने बैठे हैं मुरली, वो तो बेचारा सो ही रहा है, लेकिन तुम तो पता नहीं कहां भटक रहे हो। तो दूसरा मुरली सुनते समय सरोते का काम करते हैं, बुद्धि कटकट चलती रहती इधर उधर। और तीसरे हैं सोता, वो तो अनुभवी हैं, देखते ही होंगे, मुरली सुनते सुनते भी झुटका मारते रहते, उनके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। और चौथा है स्वरूप बनते, जो मुरली सुनते सुनते स्वरूप बनते जाते हैं, उनको प्राप्ति होती। वो आत्माएं मुरली से मधुरता का वरदान जल्दी प्राप्त कर लेती। और दूसरा है ऊ अर्थात उपरामता। जैसे ज्ञान मिला, समझ आया, बाबा ने बताया कि यह दुनिया खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है, तो इस दुनिया से वैराग्य आने लगा। देह भी खत्म, सब खत्म होने वाली है, लेकिन उपरामता की दो स्टेज है, एक है न्यारा बनना, एक है उपराम बनना। न्यारा और उपराम दोनों में अंतर है या एक ही है, क्या कहेंगी बहनें? न्यारा बनना और उपराम। तो न्यारा और उपराम दोनों एक ही है या अलग अलग? तो न्यारा किसे कहेंगे, उपराम किसे कहेंगे? और उपराम छोड़ दें, अच्छा ठीक, आप पांडव, अच्छा न्यारा और उपराम में अंतर है। न्यारा है कमल का फूल और उपराम है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। कमल का फूल परिवार में रहते हुए और परिवार से न्यारा होता है, और उस न्यारे की निशानी है प्यारा, क्योंकि कमल का फूल जब तक पानी के अंदर है, परिवार के साथ है, तब तक कोई उसे देखता ही नहीं है। लेकिन जैसे वो सबको छोड़ के पानी से ऊपर आ जाता है, खिल जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और फिर वही फूल देवताओं पर अर्पित होता है। तो आप भी दो बात से चेक कर सकते हो, न्यारे हैं, एक तो प्यारे लगेंगे स्वयं को स्वयं से, और दूसरे भी, दूसरे मतलब अज्ञानी नहीं, ब्राह्मण, उनसे प्यारे लगेंगे। और दूसरी बात, वही आत्मा भगवान को भी प्यारी लगेगी, वो परिवार के साथ है। और गुलाब के फूल की विशेषता क्या है? उपराम, उपराम की निशानी है सब कुछ किनारा छूट जाना। जैसे बताया, सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ भी, जब पूरा पक जाता है तो कड़ाही में चिपकता नहीं है, पहले उसको छुड़ाना पड़ता, न्यारा बनाना पड़ता है। लेकिन जब कंप्लीट पक गया तो उपराम हो गया। तो पहला न्यारा है, सेकंड स्टेज उपराम है। उपराम की विशेषता, आप गुलाब के फूल को देखो कि जैसे गुलाब का फूल कंप्लीट खिल जाता है, उसके पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, और किसी फूल के पत्ते झड़ते नहीं हैं, उसी पौधे में ही सूख जाते हैं। लेकिन गुलाब का फूल के पत्ते सब झड़ जाते हैं, क्या बचता है? सिर्फ वही बीच में जिसको बूर कहते हैं, वो बचा हुआ होता है। तो उपराम अर्थात जिसका देह से भी संबंध नहीं, देह से भी न्यारा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा, बस मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और मेरा बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा और मेरे बाबा का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य, इस स्थिति में रहने वाले को उपराम कहते। और गुलाब के फूल की एक विशेषता है जो हम सबको धारण करनी है, वो ये है कि गुलाब के फूल में कभी भंवरा नहीं बैठता है। और फूलों में भंवरा बैठता है, लेकिन गुलाब के फूल पर भंवरा नहीं बैठता है। भंवरा जानते हैं ना, वो गुलाब के फूल पर नहीं बैठता है। तो जो उपराम स्थिति में होगा, वो ना किसी के अटैचमेंट में आएगा, ना भी उसके अटैचमेंट में आएगा। टोटल उपरा, बस वो आत्मा और बाबा और बाबा की सेवा, इसको कहते उपराम। यह उपराम स्थिति हमें मुरली के द्वारा मिलती, क्योंकि मुरली के द्वारा हमें पता पड़ा कि सब विनाश होना है, तो वैराग्य आने लगा। क्योंकि बिना वैराग्य के त्याग नहीं होगा, त्याग के बिना तपस्या नहीं होगी, और तपस्या के बिना आत्मा संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें मिला कि सब खत्म होने वाला है, तो वैराग्य आ गया, सब खत्म होना है। दुनिया में शमशानी वैराग्य है, लेकिन हमें बाबा ने बेहद का वैराग्य दिया है। कोई चीज छोड़ना नहीं है, कल विनाश हो, परसों विनाश हो, 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, कुछ पता नहीं है। जब होना होगा समय पर तो होगा ही होगा, लेकिन बेहद का वैराग्य अर्थात सब कुछ यूज करते हुए उसकी आसक्ति से परे। किस आधार से आसक्ति से परे रह सकते हैं? जैसे एक बहुत सुंदर मिसाल है, जिसको आप यूज करते हुए न्यारे रह सकते हैं। शरीर है, खाना देना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, मकान रखना पड़ेगा, सब चीजें आवश्यक है, लेकिन उससे हम उपराम रहें, उसकी विधि बहुत सुंदर एक है। अगर हम अपना लें तो सब कुछ यूज करते हुए उपराम हो जाएंगे। वो विधि है, रामायण में दिखाते हैं कि जब राम रावण को मार के अयोध्या वापस आया, राज गद्दी पर बैठा, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया, सौगात दी, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार के हनुमान जी को दे दिया, तो वो तो रतन जड़ित हार था, बहुत मूल्यवान था, लेकिन सीता जी के प्रति हनुमान ने बहुत कुछ किया था, इसलिए उनको दे दिया। तो जैसे हनुमान जी को सीता जी ने हार दिया, तो वो तो रतन थे, एक एक रतन को हनुमान जी ऐसे देखते थे, फिर दांतों से तोड़ के फिर देखते थे, फेंकते जाते थे। तो किसी ने कहा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? और किसी ने कहा, बंदर क्या जाने रतन क्या होता है? तो हनुमान जी ने कहा, रतन है या क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, मैं तो ये देख रहा हूं इसमें राम जी का फोटो कहां है। तो जो चीज, जिस चीज में राम नहीं, या जिस चीज से राम की याद ना आए, वो चीज मेरे काम नहीं। यह स्लोगन पक्का कर लो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर विधि है। मान लो आपने कपड़ा पहना, कोई भी कपड़ा पहना, तुरंत चेक करो, क्या यह कपड़ा पहनने से मुझे मीठे बाबा की याद आती है? यह कपड़ा पहनने से सेवा होती है? अगर होती है, पहनने से बाबा की याद आती है, तो वह कपड़ा बहुत 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 मूल्यवान है, वो पहनना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा कपड़ा लौकिक दुनिया से पहना और उसके पहनने के बाद आपको भी बाबा की याद भूली, थोड़ा भान आया, और देखने वाले भी आपके कपड़े को बार बार देख रहे हैं, वो कपड़ा बहुत 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 खराब है, वो कोई काम का नहीं। तो यह लक्ष्य रहे कि जिस चीज में बाबा की याद ना आए, जिस चीज से बाबा की सेवा ना हो, वो मेरे काम का नहीं। फिर आप कुछ भी यूज करो, खाना अच्छे से अच्छा खाना बनाओ, जरूर खाओ, लेकिन देखो खाते समय बाबा याद आया या खाना याद आया, क्या याद आया। अगर बाबा याद आया तो वो खाना बहुत अच्छा है। इसलिए बेहद का वैराग्य अर्थात सब कुछ यूज करते हुए यही संकल्प रहे, जिस चीज में बाबा की याद नहीं, बाबा की सेवा नहीं, वो मेरे काम का नहीं, और जिसमें ये दोनों बातें हों वही मेरे काम की है, तो स्वतः ही उपराम रहोगे। ठीक है, इसके बाद है रा। रा अर्थात रचता और रचना का ज्ञान, जो ऋषि मुनि ने असंभव कहा, नेति कहा, हम नहीं पार पा सकते, नहीं पार पा सकते हैं, वो सारा आदि मध्य अंत रचता और रचना दोनों का ज्ञान भगवान ने हमें मुरली में दे दिया। तो रचता और रचना का ज्ञान मुरली के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद है ला। इस मुरली के द्वारा हमें पता पड़ा कि इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्षण कैसे धारण करें, ये मुरली में पता पड़ा। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम देवता बनेंगे, मनुष्य से हम देवता बन जाएंगे, ये लक्ष्य तो कभी स्वप्न में भी किसी का नहीं था, लेकिन मुरली के द्वारा हमें लक्ष्य मिला कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। और देवता कैसे बने, वो लक्षण हमारे अंदर कैसे आए, वो सब बाबा मुरली में बताता रहता है। और इसके बाद है ई। ई अर्थात ईश्वरीय आनंद। मुरली की सबसे बड़ी प्राप्ति है आनंद। यादगार में भी देखो कि जैसे मुरली बजती थी, गोप गोपियां सब कुछ भूल जाती थी, बस उसी आनंद में खो जाती थी। वो आनंद है अति इंद्रिय सुख, जो हमें मुरली के द्वारा मिलता है। अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से अतीत का सुख, इंद्रियों से परे का सुख। तो जो इंद्रियों से परे का सुख है, भौतिक साधनों से परे का सुख है, वो सुख को कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। तो वो बाबा ने मुरली में बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं हो, और तुम आत्मा मेरी संतान हो, तुम्हारा मेरे साथ सर्व संबंध है और सर्व संबंधों का सुख भगवान हमें दे रहा है। कैसे भगवान से सर्व संबंधों का सुख लें, वो बाबा ने मुरली में बताया। यादगार महाभारत में दिखाते हैं, जिसमें सारे गोपियों के और श्री कृष्ण के मिलन का जो सारा गायन है, उसमें दिखाते हैं कि एक बार राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुरली मुझे दे दो, मैं मुरली बजाऊंगी, तो श्री कृष्ण ने मना किया। जैसे हम सब बाबा से कहते हैं ना, बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी हमें दे दो, देता है? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि हम बच्चे को अगर बाबा दे दे, अगर अभी आपको बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी दे दे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे जो हमारे घर वाले विरोधी हैं, इनको साक्षात्कार करें, ये सहयोगी बन जाए। और होगा तो भाई सेंटर पर पैसे की जरूरत है, चलो किसी सेठ को साक्षात्कार करा देते। तो किसको कराना किसको नहीं कराना ये तो हम जानते नहीं, इसीलिए बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी हमें नहीं देता है। तो श्री कृष्ण ने कहा ये मैं नहीं दूंगा। तो राधा ने फिर दूसरी चाल चली कि आप कहते हो कि मैं प्रेम के बस में हूं, भगवान कहता मैं स्नेह के बंधन में बांधा हुआ हूं, स्नेह से मेरे से जो चाहे सो करा लो। तो राधा ने कहा कि सबसे ज्यादा प्यार तो मैं करती हूं, मैं प्यार के आधार से कहती हूं मुरली मुझे दे दो, क्योंकि भगवान कहता ना स्नेह से जो चाहे मेरे से करा लो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तुमसे ज्यादा भी दूसरे प्यार करने वाले। अब ये बात तो राधा को स्वीकार नहीं कि मेरे से भी ज्यादा कोई प्यार करता है, लेकिन यह शब्द बाबा के सुनो कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कि कौन बाबा से कितना प्यार करता है वो तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ऊपर की चीज नहीं है। कई बार बाबा कहता है कि बांधेलियां इतना याद करती हैं, कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि जो फ्री हैं वो इतना नहीं याद करते हैं, हां बहुत ज्यादा बांधेलियां याद करती हैं। तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो राधा ने कहा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, मुझे प्रूफ दो। तो श्री कृष्ण ने कहा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ देता हूं। तो बोला ठीक है। तो क्या किया राधा ने, एक रेखा खींच करके चारों तरफ बीच में बैठ गई। उस रेखा की ये विशेषता थी कि जो उस रेखा के अंदर वही आ सकता है जो राधा से ज्यादा प्यार करता हो, नहीं तो जैसे आएगा रेखा के पास आग जलेगी, जल के भस्म हो जाएगा। तो क्या किया, श्री कृष्ण एक जगह बैठकर मुरली बजाने लगा, तो वो गोप गोपियां अब अति इंद्रिय सुख का आधार, वो गोप गोपियां जिन्होंने अपने मन से दिल से परमात्मा को अपना पति स्वीकार किया हुआ था, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा प्राणनाथ एक ही है, मेरा प्राणेश्वर बाबा एक ही है, जिसके दिल में यह था वह गोपियां कोई काम कर रही थी, दूध निकाल रही थी, कोई मक्खन निकाल रही थी, कोई कुछ कर रही थी, और बाबा की मुरली की आवाज उनको पहुंची। सबको नहीं, गोप गोपियां सब हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के पास मुरली की आवाज पहुंची जिन्होंने दिल से परमात्मा को अपना सर्वस्व माना हुआ था। उन्हीं के कानों में सारा दिन बाबा के मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा के महावाक्य स्वतः ही कानों में गूंजते रहते हैं। तो दिखाते हैं फिर उनके शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल के चल पड़ा और वहां पहुंचा जहां राधा बैठी हुई थी। तो जैसे रेखा के पास आए जलने लगी आग, लेकिन आग स्थूल है, शरीर तो सूक्ष्म था, श्री कृष्ण के पास आ गए राधा, श्री कृष्ण और गोपियां। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो कौन ज्यादा प्यार करता है। अब इसका पता कब पड़ेगा भगवान से कौन ज्यादा प्यार करता है, जब लास्ट में चलेंगे, अष्ट रतन का फाइनल होगा, तब पता पड़ेगा कौन ज्यादा प्यार करता है। अभी तो हर एक यही कहता कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन जो भगवान को दिल से अपना परमात्मा स्वीकार किया हुआ है, अगर उसके जीवन में आग जैसे परिस्थिति आए तो भी बाबा उसको सेफ रखेगा, उसका कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बाबा की याद में मस्त रहेगी रहेगी। इसलिए इतना अति इंद्रिय सुख का गायन है। तो यह ईश्वरीय आनंद आपको मुरली के द्वारा बाबा से प्राप्त होता है। तो मुरली में पांच शब्द हैं और परमात्मा में भी पांच शब्द हैं। तो परमात्मा ने जो मुरली चलाई, उस मुरली से आत्मा ये पांचों प्रकार की प्राप्तियां करके संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है, करना ही है, लेकिन विधि है होम वर्क के द्वारा, घर पर भी अभ्यास करके। तो हम सभी आत्माएं आज से संकल्प लें कि जो बाबा मुरली में कह रहा है, हम सब बच्चे अवश्य होमवर्क के द्वारा अपने जीवन में लाएंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और मीठे बाबा को अपने चलन चेहरे के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
कलयुग के संत।